अगली सूरत हुजरात है, जिसका दूसरा नाम सूरत अखलाक है, खुल के साथ। असल में ये है वो एक तस्वीर जिसमें अगर आप और मैं अपने आप को फिट कर लें तो दुनिया में उभरने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह की मदद आएगी ऐसे ही मुसलमानों पे और पुरअमन मुआशरे की तश्कील के बुनियादी नुक्ते हैं। तर्जमे ही से बात वाजे होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि रमज़ान के बाद आपको ये सूरतें तफसीर से करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، یعنی ان کی رائے پر اپنی رائے نہ پیش کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ سورت کے شروع میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیادیں پیش کر دی گئیں، اور وہ کیا ہے کہ نبی کی رائے کے آگے اپنی رائے پیش نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم سامنے آ جائے تو اس کے بعد اپنی رائے نہ دو، اور یہ جو بات کرنے کی بات ہے تو اس پہ پھر کہیے بعد با نصیب۔ نبی کے سامنے بات بھی ایسے نہ کرو جیسے کیجول انداز میں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ان کو ایسے آوازیں نہ دو جیسے اپنے آپ کو آوازیں دیتے ہو۔ اور دیکھا جائے تو نبی کی نعت پڑھنے کا ادب سکھا دیا، نعت پڑھو پر انداز ایسا نہ ہو جیسے عام لوگوں کا ہوتا ہے۔ کسی کی ایک نعت کے بول میں سن رہی تھی، آمنہ کا لاڈلا آیا ہے وہ راج دلارا آوت ہے، پہناؤ پہناؤ سکھیوں پھولوں کے ہار۔ یعنی آپ مجھے تو بولنا بھی نہیں آ رہا، یقین کریں انڈین گانوں کی دھن پہ نعت، جس کو پڑھتے ہوئے ذہن میں شادی کا تصور آتا ہے، دولہا آ رہا ہے، برات آ رہی ہے اور اس کو سکھیاں جا کے پھولوں کے ہار ڈال رہی ہیں۔ اور یہ سب کس کے لیے عورتیں پڑھ رہی تھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ دین ہے، اور اللہ نے خود کہا کہ انجان پنے میں تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی تعریف کی جائے، لیکن اس طریقے سے جیسے کہ آپ کی صحابہ نے تعریف کی۔ اے نبی، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ یہ ویسے بھی عامیانہ انداز ہے دور کھڑے ہو کے آوازیں دینا، آپس میں بھی ایک دوسرے کو ایسے نہ پکارا کریں، بہت معیوب لگتا ہے۔ وہ تمہارے باہر آنے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ یعنی انجان پنے میں نقصان پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی، اللہ ہمیں بھی دے دے، اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اللہ ہمیں بھی ایمان سے مزین کر دے، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اس حصے سے آپ کے میرے عمل کی بات کیا ہے کہ تحقیق کر لینی چاہیے۔ یہ اگلی بات کردار سازی میں، اور اس صورت میں تو بہت سے پوائنٹ ہیں، اور وہ کیا ہے، بے سوچے سمجھے ایکشن نہ لو جب تک معاملے کی تحقیق نہ کر لو، اور ڈائریکٹ اس بندے سے نہ پوچھ لو جس کی بات ہے۔ ہم صرف دوسروں کی باتیں سنی سنائی دیکھ کر اپنے آپ کو گناہگار کر دیتے ہیں۔ پھر اگلا ادب، اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، اور اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بس اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو، اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگلا نقطہ کردار سازی کا، صلح کرانا۔ ایک جملہ بولو، کیا آج صلح کی بجائے جھگڑے تو نہیں کرواتے ہم؟ बहू बेटे के बीच में झगड़ा, माँ बेटे के बीच में झगड़ा करा दो, भाई बहन से नाराज हो जाए और फला फला से हो जाए, तो याद रखिए जो झगड़े करवाता है वो कभी भी एक अच्छे किरदार का मालिक नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे कि हम इस्लाह करें। आपने फरमाया क्या मैं तुम्हें बेहतरीन सदका ना बताऊं जिसकी अल्लाह की नज़र में बहुत अहमियत है। सहाबा ने कहा जरूर बताएं। तो और चीज़ों के बीच में आपने एक चीज़ बताई, दो लोगों में सुलह कराना। चलिए किसी एक की सुलह तो करवाएं, लिखें अपने लिए अमल आज की इस एक आयत पे अमल करते हुए। आप जानते हैं बाय द वे किसी को के कोई झगड़ा हो किसी से, आप तो नहीं किसी से नाराज, आप कहेंगे क्या बताऊं। हैरत की बात है, उम्मत मुस्लिमा जिनको अल्लाह ने इस्लाम दिया, जिनको सुकून दिया, सकीनत दी, वो खुद ही लड़ी बैठी है। दुश्मनों से इसीलिए नहीं लड़ते कि आपस में जो लड़ रहे हैं, रिश्तेदारों की लड़ाइयां कोई पूछे तुझे जाके, रिश्तेदार कौन है? वो किसी की बात याद आ गई, कहा शादी के लिए क्या चाहिए, कहा बहुत सारे पैसे, कपड़े, शादी हाल, मेकअप, ये वो, और एक नाराज रिश्तेदार जिसको मनाना है। तो एक सिस्टर ने अपने बेटे की शादी की, कहती है एक नाराज नहीं 10-12 नाराज रिश्तेदार भी जरूरी होते हैं। शादी की तैयारियां करूं या रूठों को बनाऊं? ऐसे वक्त में लोग कहते हैं आप देखते हैं, आइए अब हमारी जरूरत पड़ी। मैं कहती हूँ आप उसके बगैर शादी कर लें, खुद ही ठीक हो जाएगी। ये बेकार बातें हैं, ये सिर्फ वो लोग करते हैं जिनके जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता। तो फिर करते हैं सुलह किसी से, करानी तो आसान है करनी मुश्किल है। चंद दिन रह गए हैं रमजान के, रूठों को बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बड़े बोल से बचाए। दिल दिमाग की तक में दूर तक भी कोई एक शख्स या एक कोई किरदार नहीं है कि जिससे जाके लड़ाई की सुलह करानी पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह किसी से झगड़ा नहीं है, किसी से कोई नाराजगी नहीं, किसी के लिए दिल मैला नहीं, किसी के लिए दिल कट्टा नहीं, सारे ही अच्छे, सारे ही प्यारे। जब तक दिल साफ नहीं होगा आप अल्लाह का काम नहीं कर सकते। दिल में ही आंधियां तूफान चल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मुझे याद आ रहा है जाके फलां से लड़ना है, और आने से पहले किसी से लड़के आई हूँ, मुझे बताइए मैं इतने सुकून से पढ़ा सकती हूँ आपको? तो दिल साफ कीजिए, नहीं वक्त मेरे बाद लड़ेंगे जाके जन्नत में, वहां जाके अल्लाह ने वैसे दिल साफ कर देने हैं। तो अपने झगड़े को मत पालें, मत तूल दें, याद रखिए ये बहुत बड़ी रुकावट है आज हमारी। हमारी सेहत भी खराब ऐसी होती है लोगों की बातें सुन के, ये ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो जाता है, शुगर क्यों गिर जाती है, किसी की बात याद आती है। अगली चीज, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो ना मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो इनसे बेहतर हो, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो इनसे बेहतर हो। तो भाई ये दो दफा क्यों कहा मर्द और औरतें? इससे पता चलता है कि मुसलमान माशरों में औरतों और मर्दों की नशिस्तें और महफिलें अलग अलग होती हैं। सेग्रीगेशन का एक आपको यहाँ हवाला मिल रहा है, ना औरतें मर्दों में बैठकर ना मर्द औरतों में बैठकर करें। तो आप सोचिए कि आज हमारे यहाँ क्या होता है अमूमन। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है कि कोई किसी का मजाक उड़ाए। और आप देखिए कि इतनी घटिया आते हैं कि जिसको अल्लाह के नबी सल्लम की अहदीस की रोशनी में देखें तो बहुत ही बदतर बात है। आज लोग छोटी छोटी बात पर मजाक उड़ाते हैं, कुछ चलते चलते गिर गया मजाक, और कुछ नहीं किसी का आजार बंद देख लिया तो मजाक। अब तो मुझे लगता है लोग पहनते ही नहीं, पहले क्या हालात होते थे देखिए कितनी जहालत। कोई गिर गया उसको उठाओ, पहले कहते हैं लोग कोई गिरता था लोग उठाते थे, अब उसकी तस्वीर बनाते हैं कि मैंने देखा था इसको गिरते हुए। और कभी ये जोक और गंदे ऐसे कहने से ये कहीं हुक्मरानों के लतीफे, कभी उनकी औरतों वाली तस्वीरें और कभी उनके हालात, सब डिलीट कर दिया करें। वल्ला ही ये शहादत जूर हो जाएगी, झूठ की गवाहियां मत दें। मोमिन का ये मिजाज नहीं है, ये बहुत ऑकवर्ड लगता है, बदतमीजी लगती है। और खास तौर पे दीन की तबलीग के दौरान अगर किसी का मजाक उड़ाया जाए, ये दिल यकीन नहीं करता जो कभी कान सुनते हैं कि मिंबरों पे और अपने स्टेजेस पे खड़े होकर एक दीनदार दूसरे के बारे में कह क्या रहा होता है, ये अच्छा अखलाक नहीं है। आपस में एक दूसरे पर ताना ना करो, ये भी लिखे, ताने नहीं देने। अब आज आप लिस्ट खुद ही बनाती रहें, यहां आपको तकरीबन 10 पॉइंट मिल रहे हैं सूरत हुजरात में। किरदार साजी, ताने ना दो। याद रखिए तानों से कभी कोई दीन पे नहीं आया। आप ताना देती हैं ताकि वो नमाज शुरू कर दे, है तू बेनमाजी चल नमाज पढ़, नहीं पढ़ेगी। ताना जो होता है ना ये तीर की तरह लगता है। और ना एक दूसरे को बुरे अलकाब से याद करो, ईमान लाने के बाद फिस्क में नाम पैदा करना बहुत बुरी बात है। जो लोग इस रविश से बास ना आए वो जालिम है। और अगला हुक्म, या युहल्लसीना मनु, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो बहुत गुमान करने से परहेज करो, कि बस गुमान गुना होते हैं, बदगुमानी ये हमारा आज का टाइम वेस्टर भी है। खुद से पूछिए, क्या मैं अक्सर बदगुमान तो नहीं रहती? क्या मैं बहुत जल्दी बदगुमान तो नहीं हो जाती? याद रखिए, ये बदगुमान रहना, यानी अगर वाकई आप बहुत सारे लोगों से बदगुमान है ना, तो माजरत के साथ बता दूं कि आप नेगेटिव थिंकर हैं। नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है, पंजाबी में बोल दूं? पुठी मत। किसको पंजाबी नहीं आती, तो मैं उर्दू में भी बोल दूं, उल्टी मत मारी भी, उल्टी अकल, उल्टी खोपड़ी। कुछ लोग होते ही हर चीज को नेगेटिव देखते हैं, सीधी बात कोई करे ना वो उसको उल्टे रुख से देख रहे होते हैं। ऐसा बंदा जो बदगुमान है ना, असल में वो सोच ही गलत रहा है। वो कहते हैं कि वो एक बेगम थी बेचारी, तो गाड़ी चलाने गई पहली दफा, तो मियाँ का फोन आ गया, कहा बेगम बेगम एहतियात से चलाना, अभी खबर आई है कि रोड पे कोई एक गाड़ी सबसे ऑपोजिट जा रही है। कहती बेवकूफ, मुझे तो ऐसे 100 लोग नजर आ रहे हैं। नहीं समझ आई, ये है बदगुमानी, सारे गलत मैं ठीक, मैं ना मानू, बिल्कुल मैं ना मानू वाला रवैया। तो इसको भी अपनी लिस्ट में डालिए, बदगुमानियों से परहेज करें इंशाल्लाह। अगला इशू, तजस्सुस ना करो। क्या पका है, क्या होगा, कितने का? वो तजस्सुस वाली बात तो वही बात है कि आपके हमसाये ने खीर पकाई है तो मुझे क्या? कहा नहीं, मुझे पता चला वो आपको भी भेजेगा। कहा फिर तुझे क्या? हम तजस्सुस क्या करते हैं, किसकी बेटी, क्यों, किधर, वजह, खैर, दामाद किधर है, पैसे कितने, कहाँ से आई, कब जा रहे हैं। एक तजस्सुस तो बड़े लोगों को होता है, आप वापस कब जा रही हैं? जिसको मेरे वापस जाने की डेट चाहिए वो मेरे से बात करे। आप देखिए कि वो बातें, जैसे इमाम मालिक थे, तो उनके पास कोई आया, कहा माँ उम्रू का, ये भी हमारे कल्चर में बड़ा तजस्सुस है। कहा है तेरी उम्र क्या है? कहते हैं कि माँ युगनी का, तुझे इससे क्या फायदा होगा। तो बहरहाल तजस्सुस से बचे, कोई चाहता ही नहीं कि मैं वापस, ये अच्छी सोच भी हो सकती है। चलिए, जो आता है वो जाने के लिए आता है ना। चलिए, तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे, सबसे मुश्किल काम गीबत ना करे। हफ्ते अमाल में सबसे बड़ी चीज गीबत है, आपको पता है। हदीस में आता है क्यामत के दिन कोई शख्स होकर अपनी नेकियां ढूंढ रहा होगा तो नहीं मिलेंगी उसको, तो फरिश्ते कहेंगे कि पूछेगा मैंने वो फला फला नेकी की थी, वो कहेंगे की थी। कहा किधर गई, नजर नहीं आ रही। कहेगा वो जो तुम गीबतें करते थे ना, उनकी वजह से वो नेकियां जाया हो गई। अल्लाह ताला हमें गीबत से बचाए इंशाल्लाह। जब आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे, हमने जहां भी ये सूरत पढ़ी है, तो मेरा ख्याल है कि बीसियों तरीके हमने गीबतों के डिस्कस किए, बहुत प्रैक्टिकल सूरत है, और मेरा ख्याल है कि ये जरूर पढ़नी पढ़ानी चाहिए, इससे बहुत बंदे का किरदार खुलता है। अल्लाह ताला आपको मुझे बचाए, क्योंकि अगली मिसाल बड़ी बुरी है गीबत के लिए। क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करे? देखो तुम खुद इससे घिन खाते हो। अल्लाह से डरो, अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला और रहीम है। तो गीबत क्या है? मुर्दा भाई का गोश्त खाना। सोचिए जरा, जिक्र का खाक बीमा यक रहो, अपने भाई का ऐसे जिक्र करना जो उसको ना पसंद हो। अल्लाह के नबी सल्लम के सामने सहाबा बैठे थे, एक आदमी का जिक्र किया आपसे, कहा जब तक उसे खिलाया ना जाए खाता नहीं है, जब तक सवार ना किया जाए सवार ही नहीं होता। आपने फरमाया तुमने उसकी गीबत की। कहा अल्लाह के नबी वो ऐसा ही है, तभी तो हम ये डिस्कशंस कर रहे हैं। फरमाया इसीलिए तो ये गीबत है, अगर जो तुम कह रहे हो उसमें नहीं है तो फिर ये तो बुहतान होती। तो जरा सा अपने लिए एक छोटा सा अमल का नुक्ता और मुहासबे का लिख लें। मैं अमूमन अपने शोहर से, अपनी सहेलियों से और अपनी बेटियों से क्या बातें करती हूँ दुख सुख के नाम पे, अक्सर गीबतें होती हैं। अल्लाह ताला बचा के रखे हम सबको। आप देखिए कि मिजाज कितना भी फर्क क्यों ना हो साथ रहने वालों का, गुजारा हो जाता है, शर्त यह कि ये अखलाकी बीमारियां ना हो। और ये अखलाकी बीमारियां हो ना, तो एक जहन रखने वाले दो लोग भी एक जगह नहीं रहते। अल्लाह ताला आपको मुझे गीबत से बचाए। जो गीबत से बचेगा अल्लाह उसका जामिन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसमें 6 खूबियां हों और वो इसी में फौत हो जाए, तो अल्लाह जामिन है उसका कि वो जन्नत में जाएगा। और उन 6 में से एक बात यह है कि जो अपने घर में रहे और किसी की गीबत ना करे। बहुत ज्यादा सोशलाइजिंग भी हमें गीबतों में माइल करती है, ना कहीं जाए, ना मिले, ना इतना बिगाड़ हो। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमें सारी चीजों से बचा कर रखे। देखो तुम खुद इससे घिन खाते हो। अल्लाह से डरो, अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला और रहीम है। और आप कहते हैं एक मौके पर अल्लाह के नबी के सामने किसी शख्स ने गीबत की, तो आपने उसको बुलाया और कहा जाओ अपने दांतों का खिलाल करो। हिलाल कब करते हैं जब गोश्त फंस जाता है। कहा अल्लाह के नबी मैंने तो नहीं गोश्त खाया, मैं क्यों हिलाल करूं, जैसे टूथपिक से क्यों साफ करूं। कहा अभी जो गीबत की है वो तुमने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। अस्तग़फिरुल्लाह। लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी कौमें और बिरादरियां बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। ये भी बड़ा कड़वा टॉपिक है। मेरी जात सबसे ऊंची, जात बिरादरी का चक्कर, शादी जात से बाहर नहीं करनी, बिरादरी से बाहर नहीं करनी, लड़ना भी अपनों से और रिश्ते भी उधर ही करने हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में दौरे जाहिलियत की चीजों में से एक चीज हसब नसब पे फख्र करना नहीं जाएगा। अल्लाह ने इससे बचाया है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हम इससे निकले, इसको भी अपने किरदार में डालें और इसके लिए अपने एक एक बच्चे की शादी किसी गैर बिरादरी में करें। यकीन करें 25-30-30 साल की बैठी बच्ची हैं, सिर्फ इसलिए नहीं रिश्ते हो रहे कि बाप कहते हैं करना है तो अपनी बिरादरी में करना है, अपने ही खानदान में करना है। अल्लाह ताला हिदायत दे। आप कहते नहीं अपने बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन ये ना सोचो कि दूसरे अच्छे नहीं होते। दर हकीकत अल्लाह के नजदीक तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा परहेजगार है। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। ये बदवी कहते हैं हम ईमान लाए, इनसे कहो तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूं कहो कि हम मती हो गए, ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। यानी अभी सिर्फ एक लिप सर्विस का नाम है ईमान। ईमान के लिए तो बड़ी शर्तें हैं। वइन तुतीउ अल्लाह व रसूलहु, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी इख्तियार करो तो वो तुम्हारे आमाल के अजर में कोई कमी ना करेगा। पूरे पारे में आप देख रहे हैं आमाल 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 का अजर। असल में अल्लाह ताला आपको मुझे ये बता रहे हैं कि आप कुरान पढ़ने के बाद फख्र ना करना कि बहुत नेक हो गए। जो पढ़ा है वो सारा अजर ज़ाया हो सकता है अगर तुमने इस पर अमल ना किया। यकीनन अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है। हकीकत में तो मोमिन वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर इन्होंने कोई शक न किया और अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद किया। इस पे गौर ही बस कर ले, ऐसे लग रहा है इसके सिवा कोई और मोमिन ही नहीं है। तो अल्लाह हमें इन कामों वाला बना दे। वही सच्चे लोग हैं। ए नबी, इस ईमान के दावा करने वालों से कहो क्या तुम अल्लाह को अपने दीन की इत्तला दे रहे हो, हालांकि अल्लाह आसमान और जमीन की हर चीज को जानता है और वो हर चीज का इल्म रखता है। ये लोग तुम पर एहसान जताते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इनसे कहो अपने इस्लाम का एहसान मुझ पर न रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर अपना एहसान रखता है कि इसने तुम्हें ईमान की हिदायत दी। अगर तुम वाकई अपने ईमान के दावे में सच्चे हो तो बात चेक इन अल्लाह यालम गैब समावाती वल अर्द, अल्लाह आसमान और जमीन की हर पोशीदा चीज का इल्म रखता है और जो कुछ तुम करते हो वो सब इसकी निगाह में है। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारा किरदार संवार दे।